तारा परी सोनल परी के साथ उसी बगीचे में गई थी जहां वो पहली बार परी लोक से सीधा उतरी थी। वहां सोनल परी ने तारा परी को 3 दिन का ध्यान लगाने को कहा, जिससे उसके कुल देवता उससे प्रसन्न हो जाएं और उसकी दुविधा दूर कर दें, उसे बता दें कि अमन नेक दिल इंसान है या नहीं। लेकिन ध्यान लगाने की प्रक्रिया उसे अपने असली रूप में आकर करनी होगी। तारा परी को सोनल का आइडिया पसंद आया और वो बरगद के नीचे दफन अपने वस्त्र लेकर बगीचे में बने एक सरोवर पर नहाने गई। वहीं दूसरी ओर अमन आधी रात को माली काका के घर जा पहुंचा था, जो माली काका के परिवार को नागवार लगा था। लेकिन जब माली काका को पता चला कि तारा परी गायब हो गई है तो उन्हें दुख हुआ। जब अमन ने उनसे पूछा कि उन्हें तारा पहली बार कहाँ मिली थी, तब माली काका ने थोड़ा झूठ और थोड़ा सच मिलाकर कहा, तारा मुझे उस बगीचे के पास मिली थी जिसकी मैं रखवाली करता हूँ। अमन ने माली काका से बगीचे का पता पूछा, लेकिन तभी माली काका की एक बहू उन लोगों को ताना देने लगी, आधी रात को उस लावारिश लड़की के कारण हमारी नींद खराब हो रही है, कहीं वो लड़की भाग न गई हो और पुलिस केस हो जाए तो बेकार में हम लोग फंस जाएंगे। अमन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली थी, लेकिन अमन ने अपने गुस्से पर काबू रखा और माली काका से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो बगीचा कहाँ है जहाँ आप काम करते हैं? तभी माली काका के बोलने से पहले उनकी एक और बहू अपनी कड़वी जुबान में बोलने लगी, हाँ हाँ बाबूजी, इन्हें दे दो बगीचे का पता और साथ ही बगीचे के मालिक का भी पता दे दो, ताकि ये वहाँ जाकर मदद मांगाएं। आखिर बड़े लोग हैं, वो कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देंगे, और कुछ ना सही, उस लड़की को ढूंढने के लिए इन साहब के हाथों में कुछ पैसे ही थमा देंगे। माली काका उस पर चिल्ला उठे, बस कर बहू बस कर, और कितना जहर उगलेगी अपनी इस कड़वी जुबान से। वो बहू मुंह बिचकाकर चुप हो गई और माली काका अमन को बगीचे का पता बताने लगे। और बगीचे का पता सुनते ही अमन हैरान हो गया और माली काका से बोला, क्या आप सुंदरवन बगीचे की बात कर रहे हैं? अमन के मुंह से बगीचे का असली नाम सुनकर माली काका हैरान हो गए और बोले, हाँ बाबूजी, मैं सुंदरवन बगीचे की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उस बगीचे का नाम आपको कैसे पता? तब अमन ने कहा, वो काका मुझे इसलिए पता है क्योंकि उस बगीचे का मालिक मैं हूँ। क्या या? जैसे ही माली काका ने ये सुना उनके होश उड़ गए। वो कोई छोटा मोटा बगीचा नहीं था, बल्कि करीब 1000 एकड़ में फैला हुआ बगीचा था, जिसकी कीमत का कोई आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकता था। तब माली काका ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं साहब जी, आप उस बगीचे के मालिक? अमन जी, काका, खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे खुशी है कि मेरे बगीचे की देखभाल आप जैसे ईमानदार और नेक दिल आदमी कर रहे हैं। और हाँ, मैं एक और बात से आपसे ज्यादा प्रभावित हूँ। इस बात से खुश होकर मैं आज से आपकी तनख्वाह 4 गुना बढ़ाता हूँ। जैसे ही अमन ने माली काका की तनख्वाह बढ़ाने की बात की, उनके पूरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई और माली काका की बहुओं का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। उनके पास तो कोई शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, इसलिए वे चुपचाप अपना सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गईं। अमन उन लोगों पर एक नज़र डालता हुआ वहां से निकल गया। अमन अब बगीचे की ओर जा रहा था। वो एक बार उस बगीचे में तारा को भी ढूंढना चाहता था। वो सोच रहा था कि हो सकता है तारा उसी बगीचे में जाकर बैठ गई हो और उसका कहीं ठिकाना नहीं था। माली काका ने भी उसे यही बताया था कि तारा बगीचे के पास ही मिली थी। वहीं दूसरी ओर तारा परी तारों की छाँव में उस सरोवर में स्नान कर रही थी। तब तक सोनल परी उसके सारे वस्त्र और गहने ले आई थी। तारा परी ने एकदम पवित्र होने के बाद अपने कपड़े पहने और सभी गहने पहने। जैसे ही तारा परी पूरी तरह से तैयार हुई, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस रात उस बगीचे में मानो चौदवी का चांद स्वयं पृथ्वी पर आ गया हो। तारा परी की खूबसूरती की गवाही उस वक्त उस बगीचे का एक एक फूल पौधा दे रहा था। सोनल परी भी तारा परी को वापस पहले वाले रूप में देखकर खुश हुई और वो खुशी से उसके गले लग गई और बोली, मैंने तुम्हारे ध्यान लगाने का सारा इंतजाम उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कर दिया है, तुम आओ और आकर वहाँ सारी चीजें देख लो। तारा परी हल्का सा मुस्कुराई और सोनल परी के साथ पेड़ के नीचे गई और कहा, प्रातःकाल शुरू ही होने वाला है, मैं इस ध्यान वाले घेरे में जा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरे 3 दिनों के बाद ही तुमसे मिलूंगी। ओके, मैं चलती हूँ। तारा परी सोनल परी से गले मिली और अपनी माँ रानी माँ को याद किया और कुल देवता को याद करके वो अपने ध्यान लगाने वाले घेरे में प्रवेश कर गई। अभी तारा परी को ध्यान में गए केवल कुछ मिनट हुए थे कि तभी बगीचे में अमन की आवाज़ सुनाई देने लगी। सोनल परी अमन की आवाज़ सुनकर चौंकी और वो सोचने लगी कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, और उसने जल्दी से अपनी छड़ी घुमाई और तारा परी के चारों ओर एक अदृश्य जाल बना दिया, जिसके द्वारा कोई भी तारा परी को नहीं देख सकता था। अमन ने पूरे बगीचे को अच्छी तरह से छान मारा था, लेकिन उसे कहीं भी तारा परी नहीं मिली थी। लेकिन जब अमन सरोवर के पास गया, वहाँ उसे तारा परी के कपड़े दिखाई दिए। वो वही इंसानी कपड़े थे जो तारा परी ने पहन रखे थे। तारा परी जब सरोवर में स्नान करने गई थी, तब उसने वो कपड़े उतार कर वहीं रख दिए थे और अपने परीलोक के कपड़े पहन लिए थे। वही कपड़े अब अमन को मिल चुके थे। वो कपड़े देखते ही अमन पहचान गया था और उसके दिल में किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। अमन पूरे बगीचे में तारा तारा कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन कहीं दूर दूर तक तारा परी का कुछ पता नहीं था। फिर थक हार कर वो उसी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया था और वो तारा परी के बेहद करीब बैठा था। सोनल परी के अदृश्य जाल की वजह से वो उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन अमन को उस जगह पर बैठकर अच्छा लग रहा था और वो एक सुकून सा महसूस कर रहा था। वहीं तारा परी को कुछ नहीं पता था। उस अदृश्य जाल के कारण वो बाहरी दुनिया की कोई आवाज नहीं सुन सकती थी। वो पूरे दिल से अपने ध्यान में मग्न हो चुकी थी और पूरे दिल से अपने देवता को प्रसन्न करने के जाप बोल रही थी। अमन पूरे 2 घंटे तक वहीं बैठा रहा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि तारा यहाँ नहीं है, तब वो वहाँ से उठकर अपने घर की ओर चल दिया। सोनल परी ने उसे जाता देख राहत की सांस ली और तारा परी को वहाँ छोड़कर वो भी अंतर्ध्यान हो गई। अमन दौड़ता भागता अपने घर पहुँच चुका था और उसके घर जाते ही करिश्मा जी ने ढेर सारे सवाल करना शुरू कर दिए और बोलने लगी, कहाँ है तारा परी, बताओ मुझे, बोलो आखिर है कहाँ वो, उसे तुम साथ क्यों नहीं लेकर आए। अमन सिर झुकाकर एक हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, माँ मैंने पूरा शहर छान मारा लेकिन तारा का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे, उसने तो मुझे माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया, अमन ने उदासीन होकर कहा। करिश्मा जी अमन की उदासी अच्छे से महसूस कर सकती थी। तब अमन ने कहा, मॉम ये सब कुछ उन काले जिन की वजह से हुआ है, आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उन लोगों को जड़ से मिटा दूंगा।
करिश्मा जी बोली, बेटा जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो कि वो लोग कितने शक्तिशाली हैं और शायद तुम भूल रहे हो कुछ सफ़ेद जिन भी उनसे मिले हुए हैं। एक यही कारण है कि हम लोग सफ़ेद जिन होकर भी उन्हें नहीं मिटा सकते, क्योंकि हमारे कुछ अपने जिन भी उनके साथ हैं। अगर हमें काले जिन से जीतना है तो हमें सबसे पहले उन सफ़ेद जिन्नों का पता लगाना होगा जो उनके साथ मिले हुए हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सभी जिन्नों की दावत करनी होगी, और एक बार सब जिन एक जगह इकट्ठा हो गए तो हम तिलस्मी पत्थर उनके सामने पेश करेंगे, और बस उस वक्त हमें ये देखना होगा कि तिलस्मी पत्थर को देखकर कौन सा जिन उन काले जिन्नों को खबर करता है। एक बार वो हमारे हाथ लग जाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस जिन ने हमारी कितनी कमजोरियों और शक्तियों के बारे में काले जिन्नों को बताया है। और एक और बात, अगर किसी सफ़ेद जिन ने हमारी कमजोरी और ताकत के बारे में उन जिन्नों को नहीं बताया होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझ पर, करिश्मा राठौड़ पर हमला कर सकें। और एक बार हम सारी चीज़ों के बारे में जान लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उस काले धुएं वाले जिन्नों से लड़ना, करिश्मा जी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अमन के दिमाग में करिश्मा जी की जिन्नों की दावत वाली बात अच्छे से जम गई और उसने कहा, मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे दुश्मन को हमारी क्या क्या कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो बहुत आसान हो जाएगा उन्हें हराना। तब करिश्मा जी बोली, बेटा एक काम करो, बड़े पैमाने पर जिन्नों की दावत की तैयारी करो, और हाँ उसी दावत में हम सब जिन्नों को उनकी शक्ति अर्जित करने को बोलेंगे, तो फिर तारा के पहने हुए इन कपड़ों के द्वारा हम उसका पता भी आसानी से लगा पाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अमन बेहद खुश हो गया और अपनी माँ के गले लग गया और बोला, मैं जा रहा हूँ और एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करता हूँ, और हाँ ये पार्टी कहीं और नहीं बल्कि हमारे पुश्तैनी गाँव में ही होगी, तो तुम्हें आज ही गाँव के लिए निकलना होगा, करिश्मा जी अमन को समझाते हुए बोली। तब तक मैं ज़रूरी शक्तियों को इकट्ठा कर लेती हूँ, एक बार सब शक्तियाँ जमा हो जाएं जो हमसे खो चुकी हैं उस भयानक लड़ाई में, उन्हें अब तिलस्मी पत्थर की मदद से एक बार फिर जमा करने का वक्त आ चुका है।